कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने ब्रज में सभी तीर्थों को आश्रय दिया है। जितने भी तीर्थ हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, सारे तीर्थों ने ब्रज में आश्रय लिया है। और सारे तीर्थ जो है वो व्यक्ति हैं, पर्सन। तो ब्रज में चारों दिशाओं में सब तीर्थ ने आश्रय लिया है। और ऐसे कुछ जगह है जैसे बिमल कुंड काम्यवन में, राधा कुंड श्याम कुंड जैसे गोवर्धन के पास में, तो सारे तीर्थ जितने भी है वो एक जगह पर समाये हुए हैं, ऐसा भी स्थिति है। तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि ब्रज में आने के बाद में और कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारे तीर्थ यहाँ पर खुद के शुद्धि के लिए आश्रय लेते हैं। तो एक दिन यशोदा माई मठरी बना रही थी। मठरी जानते हो, मठरी क्या होती है? कितने जानते हैं मठरी क्या होती है? मठरी एक सूखा पदार्थ होता है, तला हुआ होता है, बहुत दिन टिकता है, नमकीन होता है, और सफ़र में उसको काम में लाते हैं, सफ़र में लेके जाते हैं उसको। जैसे गुजरातियों का ठेपला होता है, यूपी के लोगों का मठरी होता है। तो मठरी बन रही थी तो कृष्णा के माँ को पूछते हैं कि क्या हो रहा है? तो बोले मठरी बन रही है। तो क्यों बन रही है? बाबा अभी त्रिवेणी संगम में स्नान करने जा रहे हैं। बोले वो क्या होता है? बोले वो गंगा जमुना और नदी सरस्वती का संगम है, वहाँ पर जब संगम में स्नान करते तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो बाबा को मिलने गए। बाबा आप कहाँ जा रहे हो? तो कह रहे हैं कि हम संगम जा रहे हैं, इलाहाबाद त्रिवेणी संगम। तो उन्होंने कहा क्यों जा रहे हैं? बोले बहुत नदी का स्नान करने का महत्व है। तो कन्हैया को ये आइडिया अच्छी नहीं लगी कि ब्रज छोड़ के हमारे बाबा ब्रजवासियों को लेकर बाहर जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि एक काम करना आप, आज के बदले में कल जाना, क्योंकि कल जो है वो अक्षय तृतीया है। तो ये अक्षय द्वितीया के दिन बात हो रही थी, वैशाख महीने के द्वितीया के दिन। तो कल अक्षय तृतीया है, बड़ा अच्छा मुहूर्त है, यात्रा भी सफल होगी। तो बाबा को भी आइडिया अच्छी लगी, इट्स गुड पॉइंट, वन डे में क्या होता है। तो उस रात को द्वितीया को वहीं रुके अपने घर। और नंद बाबा राजा है ना, वो उनके कई कुंड है, आपको भी एक दिन में क्या दिखाएंगे नंदगांव, 56 कुंड है यहाँ पर, 56 कुंड। और एक कुंड है छाछ कुंड, सब लोग सुन रहे हैं क्या? एक कुंड का नाम है छाछ कुंड, कि छाछ इतने प्रमाण में इतनी मात्रा में बनती थी कि कुछ छाछ बहती थी उधर से पहाड़ से और नीचे एक कुंड में जमा होती थी। छाछ कुंड, पूरा छाछ का कुंड था, इतना वैभव था। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, इतना वैभव था। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो नंद बाबा ने 7 धान्य के पर्वत बनाए थे, उस पर सोने के अलंकार से शिखर बनाया था और वो ब्राह्मणों को दान किया था उन्होंने। 2,00,000 गाय दान की थी, सालंकृत यानी अलंकार के साथ में। तो इतना वैभव था उनका। तो वैसे उनका कई कुंड है, मैं रास्ते में किसी को दिखाया कि एक कुंड है जो उसका नाम है यशोदा कुंड, जिसमें जब 5 साल से छोटे कृष्ण थे तो मैया कृष्ण बलराम को साथ में स्नान कराती थी, मैया भी और बालक भी, रोहिणी बलराम यशोदा और कृष्ण। लेकिन जब वो छोटे से बड़े हो गए, 5 साल के होने लगे, तो उनको मैया के साथ में स्नान करने में संकोच होने लगा। तो फिर वो मालिश तो माँ से करवाते थे लेकिन कहीं भाग के जाके आते थे। तो ये गोपियों ने कहा कि अभी वो संकोच कर रहे हैं, तो नंद बाबा ने उनके लिए अलग कुंड बना दिया, उसका नाम है कृष्ण कुंड, वो भी विराजमान है। जैसे हम अंदर मुड़े ना आशेश्वर के लिए, उसके राइट साइड में वो एक कुंड है, उसका नाम है कृष्ण कुंड। तो ऐसे नंद बाबा के कई कुंड हैं, जैसे वृषभानु महाराज का कुंड भानोखर भी है, पीली पोखर भी है, कीर्तिदा कुंड भी है, बहुत सारे रानियों के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग है। तो वैसे इनका कुंड था नंद सरोवर, बहुत विशाल कुंड था। उसके एक तरफ से कृष्ण भगवान रोज वहाँ पर गाय को पानी पिलाने के लिए लेके आते थे, वो ऐसा स्लोप होता ना स्लोप, वहाँ पर गाय आके पानी पीती। उसी में यशोदा घाट भी है जहाँ पर यशोदा भी स्नान करती है, उनका खुद का कुंड भी अलग है लेकिन चाहे तो उधर भी स्नान कर सकती है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब भी वो अपने समय पर उठे, वो बड़ी सुबह उठकर भजन करते थे नंद बाबा। तो सुबह उठे और स्नान करने के लिए अपने सरोवर में उतरे तो उनको भोर के समय पर अंधेरा होना चाहिए ना, तो बहुत ज़्यादा प्रकाश दिखाई दिया उनको। तो देखने लगे कहाँ से प्रकाश आ रहा है। बहुत देर से देख रहे तो दिखाई पड़ा कि एक तरफ से प्रकाश आ रहा है। फिर गौर से देखा तो पता चला कि एक बड़े लंबे चौड़े राजा हैं, दिव्य पुरुष, उनके शरीर से तेज निकल रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, वो उस कुंड में स्नान कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, स्नान कर सकते हैं, लेकिन वो एक अजीब बात कर रहे हैं। वो इतने राजा हैं, मुकुट पहने हुए, राजवस्त्र पहने हुए, सब कुछ पहना हुआ है, उसके साथ में वो कुंड में स्नान कर रहे हैं और कुंड में बाहर आ रहे हैं और किनारे के रज में लोटपोट हो रहे हैं। ही इज रोलिंग इन द डस्ट एट द बैंक ऑफ द कुंड, अगेन गेटिंग इन द वाटर, अगेन रोलिंग इन द डस्ट, अगेन गेटिंग इन द वाटर। तो व्हाट इज दिस, आइदर यू टेक बाथ एंड चेंज जनरेशन गो। लेकिन ये कुछ अजीब हो रहा है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, एक आश्चर्य हुआ कि ऐसे व्यक्ति को नंदगांव में कभी देखा नहीं मैंने, और कर भी कुछ अजीब रहे हैं। तो वो उनके पास हाथ जोड़ के जाते हैं, बोले महाराज दंडवत प्रणाम, आपको कभी नंदगांव में देखा नहीं, आप कौन हो? तो वो व्यक्ति बोलते हैं मैं प्रयागराज हूँ, स्वयं त्रिवेणी संगम। तो दोबारा प्रणाम करते हैं उनको, क्योंकि उनके पास जाने का प्लान था ना इनका। तो बोले ठीक है महाराज, आपका स्वागत है हमारे राज्य में, लेकिन एक प्रश्न है हमारा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें स्नान भी कर रहे हैं, रज में भी लोटपोट हो रहे हैं। तो कहते हैं कि प्रयागराज होने के नाते, ऐसा प्रयागराज का ऐसा इतिहास है कि प्रयागराज तीर्थों का राजा है, राज्याभिषेक हुआ था तीर्थों का राजा के रूप में। तो उस राज्याभिषेक में सभी तीर्थ आए थे, लेकिन वृंदावन धाम नहीं आया था। तो उन्हें भगवान से कंप्लेंट किया कि हमारे राज्याभिषेक में वृंदावन नहीं आया। तो भगवान ने कहा हमने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है, मेरे घर का राजा नहीं बनाया है। वृंदावन मेरा घर है, ही कांट बिकम योर सर्वेंट। तो प्रयागराज तो राजा है ना, तो कहते हैं कि हमारी ड्यूटी है कि हमारे दुनिया भर के लोग हमारे यहाँ पर स्नान करते हैं, अपना पाप छोड़ते हैं, सारा पाप हमारे में इकट्ठा होता है, तो हम अक्षय तृतीया के दिन एक दिन कैजुअल लीव लेते हैं और यहाँ पर आकर दिन भर संग करते हैं, स्नान करते हैं, सारे पाप हमारे शुद्ध हो जाते हैं, फिर 359 दिन वहाँ पर सेवा देने के लिए हम चले जाते हैं। बड़ा आश्चर्य लगा उनको, क्या बात है, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जाने की, वो मेरे कुंड में आके स्नान कर रहे हैं, और रज में क्यों लोटपोट हो रहे हो? तो ये रज इतनी पावरफुल है कि सारे जन्मों जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है और उनको भक्ति प्रदान करती है। तो नंद बाबा ने वही ने अपना टिकट कैंसिल कर दिया कि नहीं जाएंगे, लेकिन जस्ट टर्न किया उन्होंने, अबाउट टर्न किया ना, जैसे वो किनारे पे खड़े हैं, ऐसा टर्न किया देखा तो वो किनारे में कई देवियां स्नान कर रही हैं, बहुत प्रज्वलित, मतलब तेजोमय। तो ऐसे घूम के गए और पूछा आप देवी हो, आप कौन हो? तो कहते मैं गंगा हूँ, मैं जमुना हूँ, सरस्वती हूँ, गोदावरी हूँ, नर्मदा हूँ, सिंधु, कावेरी, इंद्रायणी, भीमा, सरयू, सब अनंत देवियां स्नान कर रही है, वो भी लोटपोट हो रही है, स्नान हो रही है। तो उन्होंने भी कहा कि हम लोग भी साल भर सबका पाप ग्रहण करते हैं, लोग स्नान करते हैं, और साल में एक दिन अक्षय तृतीया के दिन हम लोग यहाँ पर आके स्नान करते हैं और सब पाप से मुक्ति पाते हैं, फिर अपनी सेवा करने चले जाते हैं। तो नंद बाबा ने सारी मटरी फिर घर पे ही खाई यात्रा कैंसिल कर दी उन्होंने। इस तरह से भगवान ने दिखा दिया उनको कि ब्रज के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, नो नीड टू गो आउट। सारे तीर्थ, सारे धाम जो है, सारे पवित्र पर्वत, सारे सरोवर, सारे कुंड, जितने भी तीर्थ स्थान हैं, वो सब यहाँ पर आश्रय लेते हैं। तो एक बार नंद बाबा बोले कि अभी हम बद्रीनाथ जाएंगे, तैयारी चल रही थी। तो कृष्ण ने पूछा क्यों जा रहे बद्रीनाथ? उन्होंने कहा कि जब आपका जन्म नहीं हुआ था, बहुत देर तक जन्म नहीं हुआ था ना, 85 हो गए थे उनके, जन्म नहीं हुआ था उनका, तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने मन्नत मांगी थी कि पुत्र होता है तो मैं बद्रीनाथ की यात्रा करूँगा, चार धाम की यात्रा करूँगा। तो भगवान को फिर से अच्छा लगा नहीं, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप सब लोग आँख बंद कर लो, आप मत करो। वो उनको उन्होंने कहा नंद बाबा सब लोगों को उन्हें बताया आँख बंद करो, तो सभी लोग यात्री अपना सामान वाले के तैयार थे, आँख बंद किया, फिर बोले आँख खोलो, तो आँख खोला तो सब लोग ने अपने आप को बद्रीनाथ में पाया, दे फाउंड देम इन बद्रीनाथ। लेकिन बद्रीनाथ गए नहीं थे वो, भगवान ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री को वहाँ प्रकट किया, मंदाकिनी, अलकनंदा सबके साथ में प्रकट किया। तो तुरंत सामान रखा और सब ने स्नान किया, नरनारायण ऋषि पर्वत देखा, अलकनंदा नदी देखी, सब नदी दर्शन किया, हर की पैड़ी, हरिद्वार सारा दर्शन किया उन्होंने। और फिर धाम जो है प्रकट हुआ वही रह गया, धाम को बुलाया ना उन्होंने, धाम वही बस गया। तो वो जो है वो कामे वन में पहुंचने के बाद और 15 किलोमीटर आगे है वो, इतना सुंदर रमणीक स्थान है। पहले तो नदियाँ भी बहती थी, अभी नदियाँ सूख गई हैं, गंगा सब नदियाँ बहती थी वहाँ पर पहले, और नरनारायण पर्वत है, बहुत भर की पेड़ी है, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल, गंगोत्री जमुनोत्री है, सब कुछ है, ऐसे अनंत धाम है यहाँ पर। एक जगह भगवान ने बाल लीला में 3 करोड़ कन्याओं से विवाह किया है, किसी को पता है? 3 करोड़। इसको बंद कराओ ना जरा, क्या है? 3 करोड़। ऐसी है कि वैसे भी माइक्रोफोन नहीं है, जय जय श्री राधे श्याम। तो एक राजा था, इसका नाम था सिंधु नरेश, सिंधु देश का राजा था वो, इसका नाम था विमल, विमल विमल। तो बड़ा श्रद्धालु था, धार्मिक था, लेकिन उसको संतान नहीं हो रही थी। तो वो ऋषि आते हैं उनके पास, तो उनको पूछते, महाराज जी सब कुछ है, आनंद है जीवन में, लेकिन संतान नहीं है। तो वो शायद वशिष्ठ मुनि थे, तो उन्होंने ध्यान लगाया, उनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में देखा, भूत भविष्य वर्तमान में देखा, और कहा कि कोई आपका पुत्र नहीं है, आपको पुत्र नहीं हो सकता है, लेकिन एक बात ज़रूर है, मैं देख रहा हूँ आपके भविष्य में कि आपको केवल 3 करोड़ कन्या होने का संभावना है, 3 करोड़ डॉटर्स यू विल बी हैविंग। तो बहुत चिंतित हो गए वो, यथावकाश साधु के कहने के अनुसार उनको 3 करोड़ कन्या हुई, अनेक पत्नियां थी, सब मिलकर 3 करोड़ कन्याओं को जन्म दिया। लेकिन साधु ने कहा था वशिष्ठ मुनि ने कि इन सारी कन्याओं का विवाह भगवान से होगा, भगवान उनका पति बनेंगे, उनका उद्धार करेंगे। तो दुख भी थोड़ा हुआ, लेकिन बहुत खुश हुए बाद में कि भाई ठीक है, अच्छा ही होता है सब कुछ जो होता है वो। तो यथावकाश 3 करोड़ कन्याएं हुई, बच्ची थी, बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई। तो जब वशिष्ठ मुनि ने उनको कहा था कि जो भगवान उनके साथ विवाह करेंगे, हरे कृष्णा विवाह करेंगे, वो उनका वर्णन किया उन्होंने कि वो कैसे होंगे, 2 भुजा वाले होंगे, नहीं सॉरी 4 भुजा वाले होंगे, और नीला वर्ण होगा, वैदुरी मणि का मुकुट पहने होंगे, और पीताम्बर पहने होंगे, और बहुत सारा वर्णन किया, वैजयंती माला होगी गले में, कौस्तुभ मणि होगा, श्रीवत्स मणि चिन्ह होगा, ऐसे भगवान के साथ में तुम्हारी कन्याओं की शादी होगी। यथावकाश जब बड़े हो गए तो उन्होंने अपने दूत को भेजा वृंदावन में देखने के लिए, ऐसा व्यक्ति कौन है जो मेरे पति पत्री कन्याओं के पति बनने के योग्य हैं। तो वो सब जगह गए, और एक जगह उनको बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़े, उस समय उनको पूरा वर्णन मिला कृष्ण में उनका, लेकिन एक ही पॉइंट था उसमें, 4 भुजा नहीं थी, 2 ही भुजा थी, बाकी सब मिलता जुलता था। तो दूत ने देखा दूर से, थोड़ा दुखी हो गया हो कि भाई सब कुछ मिलता है लेकिन एक चीज़ मिलती नहीं है। तो दोबारा लौट के गया वो, जब लौट के चला गया वो, तो भीष्म देव अपना दिग्विजय करते हुए वहाँ पर आए थे। तब भीष्म देव जवान थे, युवा अवस्था में थे, और दिग्विजय कर रहे थे। तो उनका घोड़ा जो है वो सिंधु नरेश के पास आया था, तो युद्ध उद्योग की बात नहीं, वो मित्र थे, तो इट्स अ फॉर्मेलिटी ओनली कि यस आई साइन, आई एम योर्स। जिस प्रकार से उन्होंने मुलाकात की, तो भीष्मदेव बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान पुरुष थे, वीर भी थे। तो राजा सिंधु ने उनसे प्रश्न किया कि हमको ऐसे ऐसे साधु ने कहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने उस व्यक्ति को देखा लेकिन वो 2 भुजा वाले हैं। तो भीष्मदेव ने कहा कि मैं आपको एक गुप्त बात बताता हूँ, वो भी किसी को जाहिर नहीं की गई है, लेकिन यही वो है जो 4 भुजा वाले थे, और कंस के विषय में उनको जो भी लीला करनी है उसके में वो 2 भुजा बनकर वृंदावन में आए हैं। जब पैदा हुए थे 4 भुजा के रूप में पैदा हुए थे, देवकी माँ के बिनती से, गुप्त बात है ये, उन्होंने 2 भुजाओं का रूप धारण किया और वो वृंदावन में लीला कर रहे हैं, लेकिन है वही वो। तो इससे वो प्रसन्न हो गए, सिंधु नरेश और भीष्मदेव अपने आगे चले गए दिग्विजय करने के लिए। दूत को दोबारा भेजा और दोबारा जब भेजा तो दूर से दर्शन किया तो कृष्ण ने भी उनको देखा। तो कृष्ण ने क्या किया, एक रूप वहीं रखा जो बच्चों के साथ खेलते रह गए उधर लीला करते करते घर पे चले गए, और दूसरा रूप इसके पास आया दूत के पास, और वो दोनों हवाई मार्ग से सीधे सिंधु नरेश के राजा में चले राज्य में चले गए, विमल राजा के राजा में सिंधु देश में चले गए। तो वहाँ पर सिंधु नरेश विमल राजा बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, अनेकों कुंड थे, अनेक ऋषि मुनि बैठे थे, बहुत बड़ा यज्ञ मंडल था। तो अपनी पत्नी को लेकर यज्ञ कर रहे थे तो उसमें अचानक भगवान ऐसे हवाई मार्ग से आते हैं दूत को लेकर। कोई बीड़ी भी रहेगा यहाँ पर? तो जैसे ही भगवान अवतरित हुए वहाँ पर तो नरेश खड़े हो गए और उन्होंने वंदन किया भगवान को, पत्नी भी खड़ी हो गई, और तुरंत 3,000 कन्याओं को श्रृंगार करके लेके आए वो, और उसी कुंडों में उन्होंने भगवान का 3 करोड़ कन्याओं के साथ विवाह कर दिया, दहेज दिया, भेंट दिया, कन्यादान किया, और भगवान इन 3 करोड़ कन्याओं को लेकर हवाई मार्ग से काम्यवन आए, और काम्यवन में उन्होंने इन 3 करोड़ कन्याओं के साथ में रासलीला किया, और रासलीला जब किया तो उनके शरीर से जो द्रव निकला, आंखों से आंसू निकले, वो सब इकट्ठा हुए और एक बड़ा कुंड तैयार हो गया, विमल कुंड। और विमल कुंड में जैसे ही तैयार हो गया वो, उसमें 84,000 तीर्थ जो हैं उन्होंने प्रवेश किया उसके अंदर, इसलिए वो तीर्थराज बन गया, तीर्थराज विमल कुंड। तो विमल कुंड में स्नान करने से दोबारा जन्म नहीं होता है और गौलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा उसका महिमा है। तो ये सब बात कहाँ से निकली कि भगवान ने 3 करोड़ कन्याओं से भी अलग से विवाह किया है। साइमल्टेनियसली वो उधर गोकुल नंदगांव में लीला कर रहे थे, अपनी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, गौचारण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक रूप में वो काम्यवन में रहे और 3 करोड़ कन्याओं को उन्होंने पत्नी के रूप में स्थान देकर वहाँ पर निवास किया। मुझे और एक कथा बताने की प्रेरणा हो रही है आपको, काम्यवन इतना सुंदर वन है कि भगवान के जो 12 सबसे प्रिय वन हैं उसमें नंबर 1 प्रिय वन वृंदावन है और नंबर 2 का वन जो है काम्यवन है, अति सुंदर वन है वो, और प्रचंड भगवान की लीला स्थली वहाँ पर है, जैसे कि वो आदि बद्री केदार यमुनोत्री गंगोत्री भी वहीं विराजमान है, गया कुंड भी वहाँ पर है, गया धाम जो है ना, गया जो भगवान चैतन्य महाप्रभु गए थे पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, वो गया भी वहाँ पर प्रकट है, श्रीलंका प्रकट है, रामेश्वर प्रकट है, सेतु बंद प्रकट है वहाँ पर, पंच पांडव कुंड है, जब वो यक्ष का प्रश्न हुआ था ना वो यक्ष कुंड भी काम्यवन में है, पांडव कुंड भी पांडव उधर है, परशुराम के बने 9 कुंड भी वहाँ पर है, ऐसे हजारों कुंड है वहाँ पर, एक ही काम्यवन के अंदर, सब कभी लुप्त तो हो चुके हैं लेकिन बहुत खजाना है वहाँ पर। और आदि वरा पुराण में जो वर्णन दिया उसमें से अधिकतर वर्णन काम्यवन का दिया है, वहाँ की लीला का। आज जो राधा गोविंद का मंदिर है ना वहाँ पर चतुर्भुज विष्णु का लक्ष्मी के साथ विवाह हुआ था, और जो उसकी वेदी थी, वेदी जिस पर वो विवाह हुआ उस पर आज राधा गोविंद जी का मंदिर बना हुआ है। वो वेदी जो है वो पूरा राधा गोविंद जी का मंदिर है, वो यहाँ पर वृंदा देवी का मंदिर है, राधा गोविंद जी की प्रतिकृति मूर्ति भी है, राधा गोविंद जी वहाँ पर रुके थे जयपुर जाने के पहले, और वृंदा देवी ने कहा कि आप तो विश्व के मालिक हो, मैं केवल वृंदा वन की मालिक स्वामी जो भी हूँ देवी हूँ, तो इसलिए मैं यहीं रहती हूँ, आप चले जाना। तो वृंदा देवी रह गई काम्यवन में और राधा गोविंद जी चले गए जयपुर में। तो क्या बता रहा था कहानी आपको मैं, कौन सी कहानी बता रहा था, हाँ गणेश जी की कहानी बता रहा था, ठीक है। तो ऐसा हुआ ना कि देवताओं ने दुर्वासा जी ने दिया हुआ जो महाप्रसादी माला था उसको इंद्रदेव को दिया, दुर्वासा मुनि महा वैकुंठ से आए, जैसे हम लोग वृंदावन से आते तो महाप्रसाद लेके जाते ना, तो किसी को सबको बांटते रहते, तो दुर्वासा मुनि वैकुंठ से आए और स्वर्ग लोक में गए इंद्र के पास, उन्होंने महाप्रसादी विष्णु का माला इंद्र को दिया। लेकिन बैड लक ये था कि इंद्रदेव तभी अप्सराओं का डांस देख रहे थे, तो बैड लक ये था कि उन्होंने वो ऐसा लिया और वो अपने हाथी को दे दिया, क्योंकि मन तो उधर लगा है ना डांस देखने में, अप्सरा नृत्य कर रही है तो मन तो उसमें लगा हुआ है, तो इतना बड़ी कृपा हो रही है उसको उन्होंने वैल्यू नहीं दिया और हाथी के हाथ में दे दिया। हाथी ने अभी, हाथी तो हाथी होता है चाहे इंद्र का हो या इधर का हो, उसने उसको पैर तले दबोच दिया, कुचल दिया उसको। तो दुर्वासा मुनि ने शाप दिया इंद्र को कि तुम लोग अभी इतने लो भोग में लिप्त हो गए हो और तुमको महाप्रसादी माला की कीमत पता नहीं है, तुम्हारा सब सामर्थ्य और राज्य नष्ट हो जाएगा। उसी समय बलि महाराज जो है ना महाबली, उन्होंने दुर्वा शुक्राचार्य की इतनी अच्छी सेवा की, इतने अच्छे उनके आदेशों का पालन किया तो ब्राह्मणों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो महान तेज प्राप्त हुआ और बलि ने देवताओं पर आक्रमण किया और देवता लोग ऐसे भाग गए कि क्या करे, वैसे शाप से निस्तेज हो गए थे पहले से, ऊपर से बलि महाराज ऐसे जब आए रथ लेकर तो ऐसा लगा कि मानो हजारों सूर्य का तेज लेकर कोई आदमी आ रहा हो, उसका तेज देखकर ये घबर गए सब लोग और भाग गए। तो दोबारा उनका युद्ध हुआ तो काम्य मन में युद्ध हुआ बलि महाराज और देवताओं का, तो उस युद्ध में फिर परास्त हो गए देवता, तो सब विष्णु के पास गए क्योंकि वहां पर विष्णु का निवास है, चतुर्भुज विष्णु और एक लक्ष्मी देवी का एक नाम है भूल गया मैं अभी, उनका वहां पर निवास स्थान है चिरंतन काम्य वन में। तो वहां प्रकट हो गए भगवान और उन्होंने कहा कि आप गणेश जी को बुला लो, वो आपका सेनापति बनेंगे और आपसे युद्ध करेंगे। तो फिर गणेश जी ने बलि को ललकारा है और ऐसा भयंकर युद्ध किया है कि बलि महाराज मूर्छित हो गए, सारे देवता भी मूर्छित हो गए, सॉरी राक्षस लोग मूर्छित हो गए, और जब मूर्छा से जग गए तो भाग गए वहां से। तो भगवान ने फिर गणेश जी को दर्शन दिया है काम्यवन में और कहा है कि आप यहीं पर निवास करो, इसलिए गणेश जी को काम्यवन में निवास दिया है, वो काम्यवन में विराजते हैं। ऐसा भगवान का काम्यवन जो है वो इसी रास्ते पर है, यहाँ से आगे 15 किलोमीटर काम्यवन आता है। तो काम्यवन की व्याख्या कैसी है, काम बन जाए तो काम बन जाए, क्या समझे? मतलब काम बन यानी काम बन में जाएंगे तो सारे काम बन जाएंगे, मतलब पूरे हो जाएंगे। काम्य वन का मतलब है सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है वहां पर। अभी कितना समय है? हाँ 5 मिनट बाकी है ना, अभी और 5 मिनट का भी यूज करेंगे ना। तो भगवान ऐसे एक बार सखियों के साथ में बैठे हुए थे, तो सखियां बोली कि हमने सुना है कि आप पिछले जन्म में राम थे, उसके पहले कुर्मा अवतार थे, नरसिंह भगवान थे आप, तो आप उन्होंने मराठी में कस्सा कस्सा मी कुटे गए I don't know। वो तो सब भूलने के लिए आए ना यहाँ पर, वो थोड़ी याद करने के लिए आए कि मैं कौन था पहले। तो सखियों ने कहा कि नहीं नहीं ज्यादा होशियार मत बनना, हम सब जानते हैं, अगर आप नहीं मानते हो और आपका राम रूप नहीं दिखाते हो तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। अभी भगवान के लिए अगर सखा बोलते हैं कि कल से आपको खेल में नहीं लेंगे और सखियां बोलती हैं कि आपसे नहीं बोलेंगे, तो वो आत्महत्या करेंगे तो चलेगा, लेकिन वो ये सहन नहीं कर सकते कि मुझे सखियां बात नहीं करेंगे और सखा खेलने में नहीं लेंगे। इसलिए अगर बिगेस्ट थ्रेट फॉर कृष्णा, अगर सखा लोग बोलते हैं कि आपको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, सखी कह रहे हैं बात नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए इतना बड़ा, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं है। जैसे राधा रानी सखी ने सब मिलकर धमकी दिया कि आप मुझसे बात नहीं करेंगे, तो तुरंत कहा आँख बंद करो, तो आँख बंद कर दिया, फिर बोला खोलो, तो जैसे ही खोला तो कृष्णा राम बनकर धनुधारी धनुष धारण करके और बलराम जी लक्ष्मण बनकर धनुष लेकर जटाधारी रूप में प्रकट हो गए और सारे जितने ग्वाल बाल थे वो सब बंदर बन गए। अचानक समुद्र पैदा हो गया सबके आंखों के सामने, ऐसे ऐसे कि ये ड्रामा यहाँ चल रहा है, सब सखियाँ ऐसे आप बैठे ऐसे बैठे लाइन से ऐसे, हाँ, और यहाँ पर वो ड्रामा चल रहा है, समुद्र पैदा हो गया वहाँ पर और तुरंत वो राम बने हुए कृष्ण ने शिवलिंग को स्थापन किया और उसकी पूजा की, मतलब रामेश्वर प्रकट हो गया उधर और भगवान ने रामेश्वर लिंग की पूजा किया। और जैसे ही वो देखा समुद्र की ओर तो सब बंदर जो ग्वाल बाल थे उन्होंने सब पत्थर डालना शुरू किया, वो तैरने लगे वहाँ पर और कुछ ही मिनटों में सेतु बन गया और वहाँ तक पहुँच गया वो, फिर चालू हो गया। तो सेतु बन के एंड हो गया तो वहाँ पर लंका प्रकट हो गई और लंका प्रकट होते ही ये सब कुछ तो कुछ क्षणों में हो रहा है, रामलीला में बहुत समय लगा था उसको बनने के लिए, ये सब कुछ क्षणों में हो रहा है। और जैसे ही ये प्रकट हो गया, श्रीलंका प्रकट हो गई, तो उसमें से हा रावण प्रकट हो गया, दशानंद रावण, और तुरंत उन्होंने बाण निकाला और रावण को शूट किया, रावण गिर गया। सबने तालियां बजाई, जय हो जय हो। तो जब ही बोले, फिर आवाज आई, हवा से आवाज आई, आकाश से, आंख बंद करो, तो सबने आंख बंद किया, तो फिर कृष्ण बलराम प्रकट हो गए और ग्वाल बाल प्रकट हो गए, लेकिन शिवलिंग रामेश्वरम सेतु बंद और लंका जी वहीं रह गई। इस तरह से इस लीला के माध्यम से भगवान ने वहां पर सेतु बंद, रामेश्वरम और श्रीलंका प्रकट किया। उसी जगह पर फिर ऐसा नहीं कि एक ही लीला हो गया, समाप्त हो गया वो, भगवान की लीला नित्य लीला है। जैसे मोर का मैंने बताया ना कल, एक मोर लीला नहीं, अनंत प्रकार के मोर लीला है। वैसे उसी जगह पर दूसरी बार आए तो कृष्ण खुद बोलने लगे, अरे आप मुझे इतने ताने मारते हो, इतनी गाली देते हो, पता है मैं कौन हूँ? मैं ही राम हूँ, मैं ही नरसिंह हूँ, मैं ही वामन हूँ, मैं मत्स्य हूँ, कुर्म हूँ, वरा हूँ। बोले आए बड़े मत्स्य कुर्म वरा वाले, तो दिखा दूँ? हाँ दिखा दो। तो फिर उन्होंने दिखा दिया और फिर वही लीला प्रकट किया। फिर एक लीला में क्या हुआ, सब सखियों ने कहा हम नाटक करते हैं, अच्छा राम लीला का नाटक करते हैं, आप कृष्ण बनो, आप कृष्ण राम बनो, भैया लक्ष्मण जी जो है वो बलराम जी लक्ष्मण बनेंगे और सब लोग, और हम लोग सब देखेंगे। सखियाँ सब बैठ गई और सब लोगों ने भेष बदला अपना और पूरा ड्रामा किया। उस ड्रामा में फिर ये दोनों प्रकट किया। ऐसे अलग अलग कल्प में अलग लीला है एक ही जगह की। इस तरह से भगवान का लीला जो है ना अगाध है। सारे तीर्थों को, पहाड़ों को, कुंडों को, सरोवरों को उन्होंने ब्रज में आश्रय दिया है। और एक विशेष बात है कि ये तीर्थ जो है बाहर के, जब आप वहाँ जाते हो तो आपके पाप नाशन होता है, पाप नष्ट होते हैं, लेकिन जब यही तीर्थ ब्रज में आके आश्रय लेते हैं और वहाँ जाकर आप उनको मिलते हैं, वहाँ उनका दर्शन करते हैं, तो पाप नष्ट होता है, पुण्य भी नष्ट होता है और साथ साथ कृष्ण प्रेम भी प्राप्ति होती है, जो जो उधर नहीं होती है जहाँ पर वो विराजमान है। तो जमुना जी है, जमुना जी आती है ना, गौलोक से निकलती है, फिर विरजा को पार करती है, फिर ब्रह्मलोक में प्रवेश करती है, ब्रह्मलोक से फिर वो नीचे आती है और पृथ्वी पर आती है। पृथ्वी में तो वो जमुनोत्री एरिया है, वहाँ से प्रकट होती है और वहाँ से वो फिर वो घूमते घूमते करते करते नीचे आते आते दिल्ली होके फिर यहाँ से वृंदावन आती है। तो जितना रास्ता है उसका, उसमें कहीं भी आप स्नान करोगे तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, ये उसका महिमा है। लेकिन जैसे ही वो वृंदावन में प्रवेश करती है और वहाँ पर आप स्नान करते हो तो पाप के साथ में पुण्य भी नष्ट कर देती है और श्री कृष्ण प्रेम भी देती है। तो ये कथा चल रही थी केशी घाट पे और प्रभुपाद जी लोगों को बता रहे थे। प्रभुपाद जी थोड़े से बुजुर्ग थे ना, वयस्क थे, तो वो धीरे धीरे कपड़े उतार रहे थे। उसके पहले यंग लोग सभी कपड़े उतार के जंप मार दिए जमुना के अंदर, स्नान करने लगे। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जमुना जी में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य भी नष्ट होते हैं। तो कुछ भक्त लोग बाहर आ गए वापस। बोले कि हमको पुण्य नष्ट नहीं करना है। तो प्रभुपाद जी समझाया कि पाप और पुण्य दोनों नष्ट होते हैं और कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो बोले पुण्य को नष्ट होते हैं, पुण्य तो अच्छे होते हैं, आपका क्या विचार है, पुण्य अच्छे होते कि बुरे होते हैं, पुण्य कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? अभी क्योंकि मैंने आपको ये सवाल पूछा इसलिए आप सोच में पड़ गए। हाँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि पुण्य होगा तो वापस आना पड़ेगा, वह चाहे स्वर्ग में हो, किधर हो, इधर हो, देवता के शरीर में हो, लेकिन आना पड़ेगा। और पाप होगा तो फिर आना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कहा जाए, आपको बताया जाए, समझो पूछा जाए कि आपको ना एक चॉइस दिया जाता है कि आपको या तो पाप इकट्ठा करना है तो पुण्य इकट्ठा करना है, दोनों में से आपको बेटर क्या है उसमें, तो क्या क्या चुन करेंगे आप? नहीं, आपको चॉइस है ही नहीं, आपको दोनों में से एक चुनना है, तो आप क्या चुनेंगे? मैं जानता हूँ आप बड़े ज्ञानी हो, बड़े होशियार हो और आप जानते हो कि सत्य क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अगर पाप और पुण्य दोनों में से एक चुनने को कहते हैं तो आप क्या चुनेंगे? सॉरी, रॉन्ग नंबर, आपका उत्तर गलत है। क्योंकि पाप आप जब करते हैं, हम लोग करते हैं, तो पाप का फल जब मिलता है तो बहुत दुख होता है, होता है कि नहीं? बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होती है, उस कष्ट में हम कृष्ण को याद करते हैं, कर सकते हैं, इफेक्टिवली वी कैन रिमेंबर कृष्णा व्हेन वी आर इन पेन। लेकिन जब सुख प्राप्त होता है ना, बहुत धन आता है, यश आता है, कीर्ति होती है, सौंदर्य बढ़ता है, मालामाल हो जाते हैं, तो कृष्ण की याद नहीं आती है, फिर वो ड्रॉवर में खोलते अगरबत्ती दिखाते बंद कर देते हैं उसको। भक्ति वहीं तक सीमित रहती है, लेकिन जब दुख आता है ना तो भक्ति ही भक्ति बढ़ जाती है। तो पाप से पुण्य से पाप कभी भी अच्छा, पाप इकट्ठा पुण्य इकट्ठा करने में मत लगो आप। एक पुण्य का और एक नुकसान है, वो ये है कि जब पुण्य होता है ना तो हम लोग स्वर्ग में जन्म लेते हैं देवता शरीर में, उसमें इतना भोग है ना कि बेचारा इंद्र देखो ना, अरे दुर्वासा मुनि महाप्रसाद की माला लेके आया फिर भी उसका नज़र नहीं हटी अप्सराओं के ऊपर से, इतना भोग है। नंदनवन को देखेंगे तो पागल हो जाएंगे हम लोग, अप्सराओं का सौंदर्य देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, सबसे शरीर से खुशबू निकलती है, बहुत सुंदर खुशबू निकलती है, हर एक अप्सरा के अलग, हर एक अप्सरा के अलग, और अपना अपना शरीर भी सुंदर होता है, उसमें सुख खुशबू निकलती है, फूल खिलते हैं मुरझाते नहीं हैं, बोलो कितने फूल जमा होते होंगे, क्योंकि फूल खिलते तो है लेकिन खराब नहीं होते, इसलिए वो बार बार वो पुष्प पुष्टि करते रहते हैं, इतने फूल है अभी करे क्या उसका। जो भी कोई अच्छा हो गया तो बोले वर्षा करो। और ऐसा कहा गया कि वो उनके विमान है ना, विमान समझो भगवान ने किसी राक्षस को मारा तो विमान भर भर के लेके आते, दोबारा लेके फिर रिफिल करके आते, डालते रहते हैं, तो डालो वो स्टॉक है डाल दो इधर। ऐसा जगत है, इतना अच्छा भोजन है, इतना अच्छा शरीर है, और उस शरीर में मलमूत्र नहीं है, वहाँ पर कोई टॉयलेट नहीं है, कोई ड्रेनेज नहीं है वहाँ पर, हाँ कोई मलमूत्र है ही नहीं वहाँ पर, सुगंध ही सुगंध, ऐसे जगह पर हम जाएंगे और वहाँ का कुछ समय के लिए भोग लेंगे तो कितने अटैच हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, शिणे पुण्य मर्द लोके विशंति, एक एक दिन जैसे भोग लेते हैं अकाउंट एक एक कम होते जाता है, एक दिन समाप्त हो जाता है, फिर दोबारा मरते लोके विशंति, मतलब इस लोक में फिर दोबारा आना पड़ता है और दोबारा उस शरीर को धारण करना पड़ता है जिसमें बदबू है, मलमूत्र है, स्वेद है, म्यूकस है, ब्लड है, वो सब शरीर को धारण करना पड़ता है, लेकिन याद उस भोग की रहती है, तो यहाँ पर जो मिल रहा है फिर वो अच्छा नहीं लगता है ना। वो कल शादी में गए थे और चार स्वीट खाए, चार सब्जी खाई, इतना बढ़िया पकवान खाया, और आज घर में बीवी भाग मार्केट चले गए तो भोजन ही नहीं बना, तो कल के भोजन की याद आती है, लेकिन आज नहीं मिलता है, वो हो गया कल का फंक्शन ख़त्म, तो पैकिंग करके लेके भी नहीं आए घर पे, है ना। तो वैसे और एक आपको एग्जांपल देता हूँ, समझो आप लोग कितने, अपने में से कितने लोग दो बेडरूम के घर में रहते हैं, टू बेड हॉल किचन, कितने साल से रहते हैं, 5 साल 10 साल से रहते हैं ना। समझो आपको अगर कहा जाए कि अभी आप ना वन रूम में किचन में चले जाओ तो कैसा लगेगा आपको। लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं बचपन में, हमारा केवल 12x10 का एक घर था, ओनली वन 12x10, उसके अंदर किचन भी था और बाथरूम भी था, उसके हम लोग 9 लोग रहते थे उसके अंदर, 9 पीपल, 25 साल तक मैं रहा उसके अंदर, मेरा MBBS का पढ़ाई भी उधर ही किया मैंने, हम लोग जीने में बैठ के पढ़ाई करते थे और किसी के दरवाजे के बाहर सोते थे, गर्मी में छत पे सोते थे, बारिश आने पर भाग के नीचे आते थे और कहीं जगह ढूंढते थे घर के बाहर ढूंढते थे, फिर हम लोग मीरा रोड में आए, फिर अभी घर बना। अगर आज हमको बोलेंगे कि 25 साल जहाँ तक आप जहाँ रहे वहाँ पर आपको दोबारा जाके रहना है तो कैसा लगेगा, बहुत मुश्किल होगा, पूरा टॉयलेट बाहर है, सोने को जगह नहीं है, टेरेस पे सोना पड़ता है, मच्छर काटते हैं, ये वो, 25 साल जहाँ पर आराम से रहे, लेकिन जब उन्नति हुई और फ्लैट में गए तो उसके बाद में दोबारा अगर आने को कहेंगे यहाँ पर तो बहुत कष्ट होता है। वैसे यहाँ पर रह रहे पलग हम लोग, यहाँ पुण्य किया, ऊपर गए वो सारा भोग ले लिया, फिर वहाँ पर डिस्चार्ज हो गए तो नीचे एडमिशन हो गया, फिर क्या हुआ, फिर बहुत कष्ट हुआ, कष्ट होता है। वो जो यहाँ का जो पुराना जलेबी है वो अभी अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर और कुछ खा के आए ना, तो यहाँ पर का अभी फिर वापस अच्छा लगता नहीं है। तो पुण्य के नुकसान किसमें हैं, पुण्य बुरा इसलिए है क्योंकि पुण्य का एक बार भोग लेने के बाद में बाकी सब कुछ एकदम टेस्टलेस लगता है, लेकिन पाप का भोग करते हुए भगवान की याद आ सकती है। इसलिए पुण्य और पाप में कोई चयन करने को बोला ना तो पाप अच्छा है, क्योंकि पाप आपको याद दिलाएगा, पुण्य आपको याद नहीं दिलाएगा भगवान की। सब लोग विचार करना इस बात पर। और पुण्य इकट्ठा करने के पीछे मत लगना, हाँ डोंट डू फिलैंथ्रोपी, डू कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति करना और पुण्य पाप दोनों हिसाब नष्ट कर देना। एक ही हिसाब रखना बस, जो भगवान उसको नोट करे वही हिसाब रखना, बाकी देवता लोग चित्रगुप्त यमराज नोट करने वाला हिसाब मत रखना, वही हिसाब इकट्ठा करना जो कृष्ण भगवान देखेंगे और नोट करेंगे उसको और उस पर अमल करेंगे, और वो है कृष्ण भक्ति का मार्ग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।